السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
خدا قبول کرے. جانتے ہو فرزاد ملکی کے ساتھ کیا ہوا؟
کالج میں سنا. مجھے اس سے کوئی شکوا نہیں ہے.
جانتی ہوں مجھے یقین تھا.
ایک بات آپ سے کہنا چاہتا تھا.
کہو.
میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو بہت چاہتا ہوں.
اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہو.
آج جلال چچا سے گفتگو ہوئی.
لڑائی تو نہیں ہوئی؟
نہیں نہیں. میں جانتا ہوں کہ جب بابا کوما میں تھے تو آپ نے بہت سخت فیصلہ لیا تھا.
تو آخر کار جلال برداشت
نہیں
کر پائے.
انہوں نے وہ باتیں بتائیں جو میں جانتا تھا.
بہت سخت مرحلہ تھا. تمہارے بابا سانس لے رہے تھے اونچی آواز میں. ان کا دل بھی ٹھیک سے کام کر رہا تھا ایک گھڑی کی طرح. اسی طرح جیسے پہلے کیا کرتا تھا.
میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے کو پریشان کریں.
نہیں بہت پہلے تم سے کہنا چاہیے تھا لیکن ڈر رہی تھی. ڈر رہی تھی کہ تم بھی اپنے دادیال والوں کی طرح مجھ پر برس پڑو گے. میں ان دنوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی لیکن اپنے فیصلے سے بہت مطمئن ہوں.
امی آپ نے صحیح فیصلہ لیا تھا.
شب بخیر.
شب بخیر امی جان.
کوئی بات نہیں. فون کرنے کا بہت شکریہ. خدا آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت کرے. خدا حافظ. اپنے عزیزوں کی موت ایک طرف اور بعض لوگوں کا سوال کرنا اور جواب سے راضی نہ ہونا دوسری طرف.
زندگی بھر میں نے خدا سے صرف ایک عزت مند زندگی کی خواہش کی. پتہ نہیں یہ مصیبتیں میرے کون سی غلطی کی سزا ہیں.
ناشکری مت کرو. اگر ہم نے اپنا داماد کھو دیا ہے تو اس کے بدلے میں خدا نے ایک بچہ ہمیں دیا ہے. فرجاد یہ ایک نشانی ہے.
ٹھیک ہے لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا.
اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے سے کیا فائدہ. ہمیں اس وقت آزر کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے جو ایک بچے کے انتظار میں ہے.
میں نے سوچا ہے کہ ولادت کے بعد اپنا کام وام کم کر دیں گے. تم سب کا خیال زیادہ رکھیں گے. میرا تو تم لوگوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں.
فرزاد کی موت بہت بڑا جھٹکا تھا लेकिन ये जान लो कि सख्तियों में बच्चे ज़्यादा हम पर भरोसा करते हैं। अगर हम और तुम भी उनसे हाथ खींच लें तो वो ये सख्त मरहला कैसे तय कर पाएंगे?
मुझे लगता है कि मैं इन दिनों बहुत बूढ़ा हो गया हूँ।
तुम तो जवानी से ही बूढ़े थे।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, फरमाइए।
एक काम था जनाब, कुछ दिन पहले मैंने एक 70 मिलियन का चेक आपके बैंक में रखवाया था, लेकिन वो अब तक आपके बैंक से हमारे अकाउंट में आया नहीं है।
अकाउंट नंबर और चेक का नंबर बताइए।
हिसाब तो फरजाद मलिकी साहब के नाम का है, उसका नंबर
जी पहचानता हूँ, लेकिन उनके इंतकाल की वजह से उनका अकाउंट बंद हो गया है।
लेकिन चेक की तारीख उनके इंतकाल से पहले की थी। मैं उनकी बहन
जी जानता हूँ, वो भी और आपके वालिद भी हमारे बहुत अच्छे कस्टमर थे, लेकिन हम उस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते। असल में उनका अकाउंट उनके इंतकाल से एक हफ्ता पहले ही कोर्ट के फैसले से बंद हो गया था।
जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ इसी वक्त।
बहुत ज़हमत की तशरीफ़ लाई। मुझे अंदाज़ा है सख्त है, मेरी हमदर्दी कबूल करें। आपको खबर थी फरजाद वापस आ चुका है?
जी हाँ, मालूम था।
तो क्यों हमें तिला नहीं दी? मैंने तो कहा था कि उसकी जान खतरे में है। उसने बताया कि क्यों आया है, कहाँ है?
जब बाहर था उसी वक्त उसने कहा था आएगा। कह रहा था जब कुछ किया ही नहीं है तो डर कैसा।
आपको कैसे पता चला कि आ गया है?
कई बार उसने फ़ोन किया था जबकि कुछ बोलता नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि वही होगा। उसकी सांसों से पहचान लेती थी।
ये बैग उसके साथ मिला है। मेरे ख्याल में ये आपके ही हैं।
ये उसका बर्थडे गिफ्ट था, मैंने उसके लिए खरीदा था, उसे पसंद करता था।
ये भी उसके सामान में था।
ये मेरा है, इसे घर में छोड़ आई थी जब उससे अलग होने का फैसला किया था। अभी ले सकती हूँ?
अफसोस के साथ अभी नहीं ले सकती हैं।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
मुझसे कोई काम था?
तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
मेरा बचपन से यही काम है कि मलिकी फैमिली की मदद कर, कहिए। लेकिन उम्मीद है कि इस बार मामला अली रज़ा फ़हीम तक ख़त्म हो।
तंजिया बातें सुनने का मेरा मूड नहीं है, वो कहानी मेरे लिए ख़त्म हो चुकी है। मुझे पैसों की ज़रूरत है।
कितना चाहिए?
बहुत ज़्यादा, इतना जिससे कि एक साल तक यहाँ से दूर रह सकूँ।
तो बेहतर है अपनी अम्मी के पास जाइए, क्योंकि मेरे पास में नहीं है। सच पूछिए तो अली रज़ा फ़हीम के माली हालात मुझसे और आपकी अम्मी से कहीं बेहतर हैं। चलता हूँ।
रुको पैमान, प्लीज एक मिनट।
इस चेक का फिलहाल कोई फायदा नहीं। आपके मरहूम भाई का अकाउंट बंद है जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए।
कब तक टाइम लगेगा?
6 महीने से 1 साल तक, अलबत्त इस शर्त के साथ के नवादरात की वजह से उनका माल जब्त न किया गया हो। तो देखिए निशीन साहिबा, इन इत्तेफाकों के बाद मुझे भी यहाँ रहने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है। न रफ़ी साहब रह गए हैं और न ही फरजाद साहब, और ना निशीन साहिबा, आपके और मेरे हालात एक ही तरह के हैं।
इसका क्या मतलब?
इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप अपने तवक्को से पहले उन चीज़ों तक पहुंच सकती हैं जिसकी आपको ख्वाहिश है। सिर्फ मुझ पर भरोसा कीजिए।
इसके अलावा कोई रास्ता है?
नहीं, न कोई रास्ता है और न ही मुझमें बर्दाश्त है। पुलिस का चक्कर, पूछताछ, कर
मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मुझे भिजवा दो।
जी हेलो।
अस्सलाम वालेकुम ज़रीम साहिबा, फरजाद हूँ।
वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए।
मुझे मालूम है कि आप भी हमारी तरह गमज़दा हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक बात आपसे कहना ज़रूरी है।
कैसी बात?
खुदा के रहम करम से मेरी बेटी, आपकी बहू प्रेग्नेंट है।
आज़र प्रेग्नेंट है?
फरजाद के बखौल ये दिल की तसल्ली के लिए आया है जो खुदा ने हमें बख्शा है।
आपको यकीन है?
अगर यकीन ना होता तो आपको फोन करती।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। खैर हो, ज़रूर मैं आज़र से मिलने आऊँगी।
खुदा हाफिज़।
खुदा खुश हुए थे ना? मैंने पूछा खुश थे?
पता नहीं, बोलने के अंदाज से तो नहीं लग रहा था।
जरूर वो भी हमारी तरह शॉक्ड हो गए होंगे।
मुमकिन है।
अस्सलाम वालेकुम फरजाद साहिबा।
वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिएगा, मुतवज्जे नहीं हो पाई।
कोई बात नहीं, ताज़ियत पेश करता हूँ। इंशाल्लाह आपका यह आखिरी गम हो।
बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरी तरफ से घर पे भी ताज़ियत पेश कीजिएगा।
शुक्रिया।
फी अमानिल्लाह।
नौशीन ने तुमसे ये बातें की?
जी हाँ, उन्होंने खुद ही मुझे फोन किया। कुछ हुआ है क्या ज़रीन साहिबा?
नहीं नहीं,
मुझे उम्मीद नहीं थी नौशीन इन हालात में भी।
जी हाँ, जिंदगी भर आज़ादार तो नहीं रह सकती। अलबत्त मुझे यकीन है कि उनकी मुआफ़क़त आपकी मेहनतों की वजह से है, चूंकि मैं बिल्कुल नाउमीद हो चुका था।
ठीक है ठीक है, बस करो।
ये लीजिए।
मैं नहीं पीऊंगा, आप लीजिए।
पियो, इसमें जहर नहीं पड़ा है।
ये कैसी बात कर रही हैं जरीन साहब? मुझे आप पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है, खास तौर से इस वक्त की जब इंशाल्लाह।
तुम इत्मीनान रखो, तुमको नहीं मारूंगी, अलबत्ता फिलहाल। हमें बहुत से काम करने हैं।
मैं कल से अदालत का चक्कर काटूंगा ताकि एर्सो मीरास का फैसला करा सकूं। आज़र साहिबा का हिस्सा देने के बाद बाकी सब तो।
और तुम्हारा हिस्सा?
मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
यानी इतना मार चुके हो कि अब इसकी जरूरत नहीं है?
ऐसा नहीं है, मेरा मतलब यह था कि नौशीन साहिबा के हिस्से के बाद हम दुनिया के दूसरे कोने में चैन सुकून से रह पाएंगे। बहुत है हमारे लिए।
फिलहाल इसके बारे में मत सोचो।
नहीं, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, बस कुछ सरकारी काम रह गए हैं जो। कुछ हुआ है क्या?
आज आज़र की माँ का फोन आया था।
तो
आज़र प्रेग्नेंट है। इसका मतलब जानते हो?
मैं नहीं समझा।
अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर आज़र का कोई बच्चा हो तो ना मेरा हिस्सा बचेगा, ना नौशीन का और ना ही तुम्हारा।
तो क्या करना चाहिए?
इंतजार करेंगे बच्चा होने तक। अगर बच्चा जिंदा रहा तो सारा माल उस बच्चे और आज़र को मिल जाएगा।
मतलब सब कुछ अपने हाथ से निकल गया?
डरो नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ।
मैं डरा नहीं हूं, लेकिन
शायद तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी।
बिल्कुल गौर से सुना है। आप ये कह रही थी कि आज़र साहिबा।
देखा ना, तुम समझ नहीं पाए। मैंने कहा अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ तो।
मैं समझ नहीं पाया। आप कहना चाहती हैं कि
ठीक समझे? हमारे पास एक ही रास्ता है, पैमान। अगर अपने हक तक, अपने हिस्से तक और नौशीन तक पहुंचना चाहते हो तो इस बच्चे को जिंदा पैदा नहीं होना चाहिए।
आजा बेटा, क्यों इतनी जल्दी में, कहाँ जा रही हो?
ये बाबा से पूछिए।
तुम्हारे बाबा को तो हमेशा ही जल्दी रहती है। एक मिनट रुको। लो बेटा, तुम्हारे लिए अनानास लेके आई हूँ, थोड़ा खा लो।
अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे देर हो रही है। और हाँ, अब चिड़ होने लगी, इतना आपने मुझे अनानास खिलाया।
तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना और बड़ों के काम में दखलत मत करना। अनानास बच्चे की जहानत बढ़ाता है।
जी जरूर, लेकिन ये जान लीजिए मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ज़हीन हो।
जब काम पूरा हो जाए तो बाबा को फोन करना, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। और अगर खुदा ना खासा तबीयत बिगड़े तो मुझे फौरन बुला लेना।
अम्मी इन बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
तुम मुझे कुछ ना सिखाओ, बेहतर है कि सिर्फ अपना ख्याल रखो।
लेकिन मुझे लग रहा है कि आप परेशान हो रही हैं मेरी वजह से।
जब तक माँ नहीं बनोगी इन बातों को समझ नहीं सकती। मैंने इस मौके को हासिल करने के लिए बहुत इंतजार किया है।
इसका तो मुझे यकीन है, लेकिन बाबा मुझे यकीन है कि अभी जब उनकी गाड़ी में बैठूंगी तो फौरन गुस्सा करेंगे। हाँ। क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं मेरा।
ना उनका दिल मानेगा और ना ही उनकी हिम्मत पड़ेगी। परेशान मत हो बेटा।
अम्मी बस कीजिए ना, बहुत खा लिया।
ठीक है, बस ठीक है। हाँ ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा के हिफ्ज़ो अमान।
खुदा हाफिज।
तुम तो कह रही थी दो मिनट में तैयार हो जाओगी।
माफ़ कीजिएगा, आपके अहलिए मोहतरमा दो घंटे से दरवाजे पे मेरे मुंह में ठूसे जा रही हैं। कहिए तो आपका एतराज़ उन तक पहुंचा दूं।
अलबत्ता शायद ज़रूरत थी जो मुझे इंतज़ार करना पड़ा। आप हमेशा ठीक कहती हैं।
बस कीजिए बाबा, अब चलिए भी प्लीज़, मुझे भी देर हो जाएगी और आपको भी।
ये भी प्लीज़ अपने बैग में रख लीजिए, अगर कमज़ोरी महसूस हो तो खा लीजिएगा।
कसम से अम्मी ने सुबह से अब तक मेरे मैदे को एक मिनट भी आराम नहीं पहुँचाया।
अलबत्ता उनका हक है, आपके पास एक अमानत है जो सही सालिम उन्हें देना है।
जी अब क्या चले?
Thank you.
जब तुम्हारा काम पूरा
जी,
हो जाए
जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो आपको फोन करूंगी, आप मुझे लेने आ जाएंगे जरूर। लेकिन मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा। अभी पता चला है कि 3 किताबें रह गई हैं, इसीलिए अभी थीसिस नहीं लिख सकती। 2 ज्यादा है बाबा, एक आप ही रख ले।
ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी को पता चले तो कयामत मचा देंगे।
ठीक है, परेशान ना हो, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज बेटा।
हमारे घर के अच्छे दिन कितने कम थे। ज्यादातर फोटो सिंगल हैं या ज्यादा से ज्यादा मैं और आप।
मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि एक अच्छी फैमिली और अच्छी जिंदगी बना सके, लेकिन नहीं हो पाया। यानी तुम्हारे बाप ने नहीं चाहा, बिल्कुल तुम्हारे इस वक्त की तरह।
मैंने जब भी आपके मशवरे पर अमल नहीं किया तो आप बाबा जैसी बन गई। बाबा की तरह नहीं सोचा तो आप जैसी बन गई। इसीलिए मेरी ज़्यादातर तस्वीरें सिंगल हैं।
अभी इन बातों का वक्त नहीं है। तुमने हमेशा अकल से काम लिया है। मुझसे सुनो तो इस लड़के पर भरोसा मत करो।
वो इंसान जिसको आप वो लड़का कह रही हैं, जब से मुझे याद है बाबा का, भाई का और आपका खास आदमी रहा है। अब जब मेरी मदद करने आया है तो आप मुझे होशियार कर रही हैं।
यकीन करो, सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने तमाम मुश्किलें और परेशानियां तुम्हारे लिए बर्दाश्त की हैं। थोड़ा सब्र से काम लो, तुम गलती कर रही हो।
इत्तेफाक से शायद मेरे पहले के काम गलत थे। आज़र और फजाद की शादी करवाना, इसकी कोशिश की बाबा अली रज़ा को कबूल कर ले। मैं चाहती थी कि ये दुनिया बस मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे।
तुम अभी बहुत जवान हो, बहुत वक्त पड़ा है।
कितने दिन से ये सिगा कपड़े पहन रखे हैं?
अम्मी अब बस कीजिए।
पैमाने सोहराबी, वो नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। अपनी किस्मत उसके हवाले मत करो।
अम्मी आपने मुझे सिर्फ ये सिखाया कि फुला काम मत करो, पर कभी नहीं सिखाया कि मैं क्या काम करूं। पैमान सोहराबी वो वाहिद शख्स है जो ये बात जानने के बावजूद कि उससे नफरत करती हूँ मेरा इंतजार करता है। अब उसी से मदद चाहती हूँ कि मुझे इन हालात से निकाले।
किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी।
अब आप कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो थप्पड़ मार लें, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है।
बायोकेमिस्ट्री के जज्बात को जिनको ज़रूरत हो तो फ़हीम साहब से रूम नंबर 22 से दरियाफ़ कर सकते हैं।
अच्छा ठीक है, दे दो भाई जो भी हो गया। ठीक है इसको दे दो, मुझे दे दो। ठीक है ठीक है, दे दो ये दे दो।
बाहर मिलते हैं।
हाँ 2 मिनट में हम भी आ रहे हैं, चलो।
वालेकुम सलाम फरजाद साहिबा।
वालेकुम सलाम।
तबीयत कैसी है, घर पे सब ठीक है?
शुक्रिया ठीक हूँ।
मुझे याद आ रहा है कि शायद ये सब्जेक्ट आप पढ़ चुकी हैं और सिर्फ थेसिस रह गई है, सही कह रहा हूँ?
जी मैंने ये कोर्स लिया था लेकिन बाद में डिलीट करवा दिया, नहीं मालूम कैसे भूल गई। माफ कीजिएगा, तैयार हो गया?
जी माफ कीजिएगा, हो गया, लीजिए।
शुक्रिया, मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। यवी साहब के नोट्स लेने आई थी।
वालेकुम सलाम।
अच्छा तो तुम भी हो। देखे तो इन्हें क्या हो गया है?
अरे जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ।
अरे आप लोग उठाएं इन्हें।
उठाओ इसको, उठाओ
जल्दी करें,
उठाओ इसको,
अपनी गाड़ी से इन्हें लेकर हॉस्पिटल चलते
हैं। कोई मदद करे इसकी, उठाओ।
जल्दी करें,
मदद करो,
देर हो रही है।
चलो उठा उठा उठा,
जल्दी करें जल्दी।
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو، سپید دمایم.